ایران رادیو پادکست. دوستو روزویلڈ اسٹریٹ پوڈکاسٹ کا یہ پانچواں ایپیسوڈ ہے. ایران ریڈیو سے میں ہوں سید میثم عباس. اگر آپ دوسرے دلچسپ وشوں پر بھی پوڈکاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ iranradio.ir/hi پر وزٹ کر سکتے ہیں. فروری 1979 میں اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد اپنے ہتوں کو خطرے میں دیکھ کر امریکہ نے اپنے کھوئے ہوئے پربھاؤ کو پھر سے حاصل کرنے کا پریاس شروع کر دیا. جب تک امریکہ کا سمرتھن کرنے والی ہستیوں اور سموہوں کا استعمال کرنا سمبھو تھا تب تک تختہ پلٹ جیسے جوکھم بھرے طریقوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. روزویلڈ اسٹریٹ استھت امریکی دوتاواس اور سی آئی اے کی رڑنیتی امریکی سمرتھک راجنیتک طاقتوں پر بھروسہ کرنے کی تھی. اس کے علاوہ ایک ایسی سینیہ کارروائی کے لیے زمین تیار کرنا تھا جسے ضرورت پڑنے پر انجام دیا جا سکے. اس دوران سی آئی اے کی سب سے بڑی یوجنا مڈل لائن کولیشن تھی. اس یوجنا کا مقصد ایران میں ادھاروادی راجنیتک اور سینیہ طاقتوں کو ایک ساتھ لانا تھا جو کرانتیکاری سرکار کا وکلپ بن سکیں اور امریکی ہتوں کی گارنٹی دے سکیں. ادھاروادی یعنی وہ لوگ جو کرانتیکاری وچار نہیں رکھتے تھے. اس کے باوجود ایران کے خلاف کٹھور کارروائی کے ورودھی تھے. اگر یہ گٹھ بندھن سفل ہوتا تو امریکہ پرچار اور راجنیتک چالوں کے ذریعے ادھاروادی ہستیوں کو ستا میں لا سکتا تھا اور ایران میں اپنے پورو پربھاؤ کو کچھ حد تک بحال کر سکتا تھا. امریکی دوتاواس سے ملنے والے دستاویزوں میں اس یوجنا کا ذکر موجود ہے. 11 مئی 1979 کو سی آئی اے مکھیالے سے تہران اسٹیشن کو بھیجے گئے ایک میسج میں کہا گیا، ایران میں ہماری راجنیتک کارروائی کا مقصد ایک ایسی سرکار کو ستا میں لانا ہے جو امریکہ کے ہتوں کا خیال رکھے. اس یوجنا میں لبرلز کو ایسے لوگوں کے روپ میں پریبھاشت کیا گیا تھا جو نہ صرف کرانتیکاری وچاردھارا کے ورودھی تھے بلکہ کٹر پنتھی، وامپنتھی اور اسلامی دھاراؤں سے بھی دوری بنائے ہوئے تھے. ان سموہوں میں کچھ راجنیتک ہستیاں، سینیہ کرمی اور یہاں تک کہ دھارمک ہستیاں بھی شامل تھیں جو امریکی پربھاؤں کی واپسی کے لیے ایک پل کا کام کر سکتی تھیں. تہران میں سی آئی اے کے اسٹیشن پرمکھ ہاوارڈ فلپس ہارٹ کی انیہ رپورٹیں بھی دھارمک امریکہ سمرتھک ادھاروادیوں کو ایک ساتھ لانے کے پریاس کا خلاصہ کرتی ہیں. سی آئی اے کے علاوہ پینٹاگن نے بھی اس یوجنا میں روچی دکھائی. تتکالین امریکی ڈیفینس سیکرٹری ہیرولڈ براؤن نے لکھا کہ کارٹر پرشاسن 1979 کے دوران ایرانی سینا اور ادھاروادیوں کو امام خمینی کا ورودھ کرنے کے لیے پروتساہت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سی آئی اے اور امریکی دوتاواس کو ایک ادھار گٹھ بندھن کے گٹھن کے لیے ایک ایسی ہستی کی تلاش تھی جو کرانتی کے نیتا امام خمینی کا سامنا کر سکے. دھارمک ہستیوں میں سے آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری کو ایک آدرش امیدوار کے روپ میں چنا گیا. وہ آذری بھاشی کھیتروں اور قم میں ایک سمودائے میں پربھاوشالی دھارمک نیتا تھے. سی آئی اے ڈائریکٹر اسٹینس فیلڈ ٹرنر نے ایک انیہ ٹیلیگرام میں اس یوجنا کے بارے میں اور اسپشٹ روپ سے بتایا، شریعت مداری سے سمپرک کرنے کا ہمارا ادیش ایک ادھاروادی سمادھان تیار کرنے میں مدد کرنا ہے. ہمارا لکشیہ اسلامی آندولن میں درار پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ ہم اس کے بھیتر ادھاروادی طاقتوں کو سمپربھوتا کی حد تک مضبوط کرنا چاہتے ہیں. شریعت مداری کے نہ صرف پہلوی شاسن کے ساتھ سکاراتمک سمبندھ تھے بلکہ بودھک اور راشٹروادی سموہوں دوارا بھی انہیں سویکار کیا جاتا تھا. CIA के दस्तावेज बताते हैं कि उसने क्रांति से पहले ही शरीयत मदारी के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर ली थी और उसे ये भी जानकारी थी कि उनका नाम सावाक के भुगतानकर्ताओं की सूची में है। CIA का शरीयत मदारी से पहला आधिकारिक संपर्क मई 1979 में हुआ था। इसी महीने आयतुल्ला शरीयत मदारी ने ईरान अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष फ्रैंक बरूस के साथ एक बैठक में अमेरिकियों से सीधे राजनीतिक समाचार प्राप्त करने की पेशकश की थी। ये प्रस्ताव CIA के लिए उन्हें मध्यमार्गी गठबंधन का मुख्य आधार बनाने का एक सुनहरा अवसर था। शरीयत मदारी ने इस सहयोग के लिए दो शर्तें रखी। पहली, संपर्क अत्यंत गुप्त और सीमित होंगे। दूसरी, ये संबंध आपसी सहयोग और समान स्थिति पर आधारित होगा। मिडिल लाइन गठबंधन को ईरान के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष अमेरिकी हस्तक्षेप का एक स्पष्ट उदाहरण माना जाना चाहिए। यह गठबंधन न केवल आंतरिक घटनाक्रमों का एक स्वस्फूर्त परिणाम था, बल्कि तेहरान स्थित CIA स्टेशन द्वारा सीधे तौर पर तैयार किया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक CIA ने शरीयत मदारी और उनके संगठन को समर्थन देने के लिए भारी वित्तीय संसाधन दिए थे। 7 जून 1979 की एक रिपोर्ट में शरीयत मदारी ने अपने अमेरिकी संपर्ककर्ता को बताया कि इस गठबंधन का खर्चा बहुत है और $5 मिलियन भी इसके लिए कम है। इससे कहीं ज्यादा बजट की जरूरत है। चार नवंबर 1979 को अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने से पहले इस गठबंधन को समर्थन देने के लिए कई वित्तीय और राजनीतिक योजनाएं शुरू की गईं। हालांकि अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के कारण ये सभी प्रयास विफल हो गए। अमेरिकी सरकार की ये कोशिशें ईरानियों की ऐतिहासिक याददाश्त में इस्लामी क्रांति के खिलाफ विदेशी हस्तक्षेप के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गईं। इस्लामी क्रांति के शुरुआती दिनों में एक मध्यमार्गी गठबंधन बनाने की कोशिश करते हुए रूजवेल्ट स्ट्रीट स्टेशन ने अपनी गतिविधियों का विस्तार ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर कुर्दिस्तान में किया। क्रांति के बाद कुर्दिस्तान प्रांत राजनीतिक और सैन्य समूहों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। CIA ने शुरुआत में कुर्द मामलों के पूर्व सावाक विशेषज्ञों से संपर्क किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वास्तविक प्रभाव डालने के लिए उसे कुर्दिस्तान में सक्रिय समूहों के साथ सहयोग करना होगा। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स वॉलंटियर गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन को मुख्य लक्ष्य के रूप में चुना गया। 7 अगस्त 1979 को CIA मुख्यालय से रूजवेल्ट स्ट्रीट स्टेशन को भेजे गए एक संदेश से पता चलता है कि संगठन इन समूहों की गतिविधियों और अलगाववादी आंदोलनों के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में गहरी रुचि रखता था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कुर्दिस्तान में CIA की गतिविधियाँ सिर्फ सूचनाएं जुटाने तक ही महदूद थीं? दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी जासूसी एजेंसी न सिर्फ सूचनाएं जुटाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि कुछ मामलों में कुर्दिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भूमिका भी निभा रही थी। हालांकि अमेरिकियों को इस बात की गहरी चिंता थी कि कुर्दिस्तान की स्वायत्तता सोवियत प्रभाव का एक बहाना बन गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजरबाइजान डेमोक्रेटिक सेक्ट और महाबाद गणराज्य के गठन के ऐतिहासिक अनुभवों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया था। इस्लामी क्रांति की जीत के बाद ईरान में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक कपकान और बेशहर में अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनों को बचा कर रखना था। टैक्समैन के नाम से जाने जाने वाले ये ठिकाने सोवियत मिसाइल और अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे और रणनीतिक रूप से अमेरिकी दूतावास से भी ज्यादा मूल्यवान थे। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सरकार सोवियत संघ के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में थी और उसे इन ठिकानों को पुनर्जीवित करने की जरूरत थी। हालांकि क्रांति के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि ईरान में इन ठिकानों को फिर से खोलना लगभग असंभव लग रहा था। इन परिस्थितियों में अमेरिकी दूतावास ने दो रणनीतियां अपनाई। पहली रणनीति ईरानी अंतरिम सरकार के अधिकारियों के साथ गुप्त संपर्क स्थापित करना था। अमेरिका का लक्ष्य इन अधिकारियों के माध्यम से टैक्समैन ठिकानों का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति प्राप्त करना था। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री हेरोल्ड हेनरी सॉन्डर्स ने 5 सितंबर 1979 को एक निर्देश जारी किया कि दूतावास ईरानी अधिकारियों से इन ठिकानों का संचालन फिर से शुरू करने का अनुरोध करे। टैक्समैन ठिकानों को फिर से एक्टिव करने के लिए ईरानी सीमाओं पर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के लिए क्रांति से 5 साल पहले तैयार की गई आईबेक्स परियोजना पर विचार किया गया। टैक्समैन के बारे में सीधे बातचीत करने के बजाय अमेरिकियों ने आईबीईएक्स या आईबेक्स परियोजना पर बातचीत की। इस संबंध में सितंबर 1979 के अंत में CIA एजेंट जॉर्ज केव ने ईरानी अधिकारियों के साथ इराक और अफगानिस्तान में सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए आईबीईएक्स के उपयोग पर चर्चा की। अमेरिकियों ने इसके लिए अधिक सतर्क रुख अपनाया। दूसरे विकल्प के रूप में उन्होंने अपने एक ईरानी सूत्र को अलबोर्स पर्वतों में एक पहाड़ी पर एक हट खरीदने की जिम्मेदारी दी, जहां वो एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित कर सकें। ये कदम गुप्त रूप से एक नया मिसाइल निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए उठाया गया था। ये योजना नवंबर 1979 में दूतावास पर कब्जा होने से पहले प्रगति पर थी। आखिर में ये सभी प्रयास 13 नवंबर 1979 को उस वक्त विफल हो गए जब इमाम खुमैनी के मार्ग पर चलने वाले छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी योजनाओं के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। हालांकि इन अभियानों के प्रति ईरानी कुछ संवेदनशील हो गए थे। ईरानी समाज की मुख्य चिंता 19 अगस्त 1953 की तख्ता पलट जैसी घटना को दोहराया जाना था। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान में अमेरिकी हितों के खतरे ने इस चिंता को और बढ़ा दिया था। विभिन्न प्रेस रिपोर्टों के जरिए अमेरिकी योजनाओं के बारे में जानकारी पाने वाले ईरानी TPAJAX प्रोजेक्ट के दोहराए जाने से भयभीत थे। इस दौरान अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर लोगों के दिमाग में मौजूद ऐतिहासिक आघात के अलावा अन्य देशों में अमेरिकी सरकार के पिछले हस्तक्षेपों ने इस चिंता को और मजबूत कर दिया था। जैसे कि 1971 में अमेरिका ने बोलीविया में जनरल ह्यूगो बंजर के तख्ता पलट और देश के वैध राष्ट्रपति जुआन जोस टोरेस को उखाड़ फेंकने का समर्थन किया था। 1973 में चिली में CIA के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप सल्वाडोर अलेंदे की सरकार का तख्ता पलट हुआ और जनरल अगुस्टो पिनोशे सत्ता में आए। 1976 में ही अर्जेंटीना की सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिकी समर्थन से अर्जेंटीना के निर्वाचित राष्ट्रपति इसाबेल पेरोन की सरकार को उखाड़ फेंका और जनरल जॉर्ज राफेल विडेला सत्ता में आए। अन्य देशों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के इस लंबे इतिहास ने ईरानी समाज को इस बात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित कर दिया था कि अमेरिका इस बार ईरान में भी ऐसा ही कोई कार्यक्रम लागू करेगा। इस स्थिति में तेहरान स्थित CIA स्टेशन के प्रमुख थॉमस आहरेन ने 29 अक्टूबर 1979 को CIA निदेशक स्टैंसफील्ड टर्नर को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट इमाम खुमैनी की विचारधारा का अनुसरण करने वाले छात्रों द्वारा अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने से एक हफ्ते पहले तैयार की गई थी। इसके मुताबिक तेहरान स्थित CIA स्टेशन ईरानी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट में ईरान की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया गया था। ये भी उल्लेख किया गया था कि ईरान में राजनीतिक ताकतें एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं। उनके विचार में ये प्रतिस्पर्धा और आयतुल्ला खुमैनी के अधिकारों का धीरे धीरे कमजोर पड़ना एक संकट और अव्यवस्था को जन्म देगा, जिसके नतीजे में क्रांतिकारी नेता हालात पर नियंत्रण खो देंगे। CIA के आकलन के अनुसार इस स्थिति में असली विजेता वही होगा जो सेना का समर्थन हासिल कर सके। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CIA का मुख्य तरीका ईरानी सेना से अधिकारियों और गैर कमीशन अधिकारियों की भर्ती करना था। CIA के साथ सहयोग करने वाले इन वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ब्रिगेडियर जनरल हामिद शिराजी थे। सितंबर 1979 में पूर्वी एशिया की यात्रा के दौरान CIA द्वारा भर्ती किए गए इस अधिकारी ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए तेहरान वापसी की और ईरानी वायुसेना में उपयुक्त नौकरी मिलने पर CIA के साथ अपना सहयोग जारी रखने का फैसला किया। लेकिन 4 नवंबर 1979 को दूतावास पर कब्जा करने के बाद इन सभी योजनाओं पर पानी फिर गया।